तेरे हाथ जहां तक जा सकता था वहां तक तो दीवार को बुलंद कर दिया गया, मजीद इसको कैसे बुलंद किया जाए। उस मौके पर परवरदिगार आलम ने एक पत्थर उसकी तरफ मुतवज्जे किया। वो पत्थर कौन सा है कि जिसको बाद में मकामे इब्राहिम कहा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर के ऊपर खड़े थे और अब ये पत्थर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत बुलंद होता। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा को ईंट पत्थर दिया करते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर के ऊपर खड़े और ये पत्थर जरूरत के मुताबिक बुलंद हो जाता है, लिफ्ट का काम कर रहा है। अगर आप तारीख की और वो किताबें जो तारीख मक्का पर खासतौर पर लिखी गई है उनमें अगर आप देखें तो ये तमाम चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर खड़े हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको वो ईंटें देना शुरू की। आज भी मक्का मौजमा के अंदर वो पहाड़ है जिसका नाम है जबलुल काबा। जबलुल काबा, जबल यानी पहाड़, जबलुल काबा यानी काबे वाला पहाड़। उसकी वजह यह है कि वहां से उन पत्थरों को फराहम किया गया था कि जो खाने काबा में दीवार के लिए इस्तेमाल किए गए। उस मौके पर बाद में उस पहाड़ से उन पत्थरों को काट कर निकाला गया और खाने काबा की दीवारों को बुलंद किया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काम कर रहे हैं, खाने काबा की दीवारों को जितना बुलंद करना था बुलंद कर दिया। अब खाने काबा तैयार हो गया। अब उसके बाद अगला काम किया है, परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म आया है, ये भी कुरान मजीद के अंदर कि वह अज़्ज़िन बिन्नास बिल हज यातूक रिजालन वाला कुल ज़ामिर यातीना मिन कुल फज्जिन अमीन। ए इब्राहिम, लोगों को बुलाओ, हज के लिए बुलाओ। यातूक रिजालन, लोग आएंगे, पैदल भी आएंगे, वाला कुल ज़ामिर और सवारियों पर भी आएंगे। यातीना मिन कुल फज्जिन अमीन, और लोग आएंगे दूर दराज के इलाकों से सफर करके इस घर का हज करने के लिए आएंगे। अज़्ज़िन बिन्नास बिल हज मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा गया, परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक जाएगी, मैं अगर बुलाऊंगा अभी तो लोगों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, कहां तक मेरी आवाज जाएगी। तो परवरदिगार आलम ने वो जवाब दिया कि जो हम सब के लिए मशाल रहा है। खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्त अगर हो सके तो इस जवाब को याद रखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा किया कि यह सवाल कर लिया, क्या परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक जाएगी, मैं लोगों को बुलाऊंगा तो इस जमीन के ऊपर तो कितने ही लोग मौजूद हैं, कहां तक मेरी आवाज जाएगी। जवाब सुनिए परवरदिगार का, जो खुदा ने मुताल में जवाब दिया वो ये था कि इब्राहिम अलैकल आजान व अलैकल बला, सजा लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। तुम सजा लगाने के जिम्मेदार हो, पहुंचाने के जिम्मेदार हो, पहुंचाना हमारा काम, फिर नतीजा हम पर छोड़ दो। तुम अपनी कोशिश करो, तुम अपने एफर्ट्स करो, नतीजे को हम पर छोड़ दो। बरादरान अजीज, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं, नतीजे के मुकल्लफ नहीं। हम कोशिश के जिम्मेदार हैं। यानी बाज़ औक़ात बाज़ अहबाब इस हवाले से परेशान होते हैं जो दीन का काम करने वाले हैं, कितने लोग दीनदार बनेंगे, कितने लोग अदादार बनेंगे, कितने लोग हुसैनी बनेंगे। आपका काम है फर्श अदा बिछा देना, आपका काम है पैगाम पहुंचा देना। जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर किसी को मोमिन या मुसलमान बनाना, ये ना ये नबी का काम था ना ये आपका हो सकता है। खुद कुरान मजीद के अंदर अगर आप देख लीजिए, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, कि रसूल का काम सिर्फ इतना है कि वो पैगाम को साफ साफ पहुंचा दे, इसके आगे उसका काम नहीं है। तो फिर हमारा काम कहां से हो सकता है। बहुत बड़ा यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज़े तौर पर सवाल किया, परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, अलैकल अज़ान व अलैनल बला, ए इब्राहिम तुम्हारा काम है सजा लगा देना, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना, इसको हम पर छोड़ो, नतीजे को हम पर छोड़ो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर एक मर्तबा उसी पत्थर पर खड़े हुए कि जिसको कुरान मजीद के मकाम इब्राहिम कहा है, वही पत्थर, उस पर हजरत इब्राहिम खड़े हुए, ये पत्थर बुलंद हुआ, बुलंद हुआ और बुलंद हुआ और बुलंद हुआ, यहां तक कि पूरा मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर आने लगा, नहीं और बुलंद हुआ, यहां तक कि हिजाज की सरजमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने, जी नहीं और बुलंद हुआ, यहां तक कि पूरी दुनिया पूरा ग्लोब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने आ गया। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजा लगा रहे, हलुम्मु इलल हज, हलुम्मु इलल हज, हलुम्मु इलल हज, आओ हज के लिए, आओ हज के लिए, आओ हज के लिए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, उन्होंने तो सदा लगाई, आवाज पहुंची कहां तक? अब ये परवरदिगार आलम का इंतजाम, क्या इब्राहिम तुम्हारी सदा सदा का सहरा साबित नहीं होगी? लोगों तक पहुंचेगी तुम्हारी आवाज? कहां तक पहुंची आवाज? जितने इंसान उस वक्त जमीन पर मौजूद थे उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना, उन सब सिर्फ उन्होंने सुना नहीं, जो उस वक्त शिकम मादर थे उन्होंने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा को सुना। सिर्फ इतना जवाब जी नहीं, इतना इससे भी ज्यादा, जितने लोग जमीन पर मौजूद थे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा को सुना, जो माओ के शिकम में थे उन बच्चों ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा को सुना जी नहीं, जो असलाब पितर में थे जो अभी शिकम मादर तक मुंतकिल भी नहीं हुए उन्होंने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा को सुना, और जिसने उस मौके पर ये जवाब दिया लब्बैक कहता है। रिवायात के अंदर है कि यही वो लोग हैं जो कयामत तक हज का फरीजा अदा करने की सआदत हासिल करेंगे, यानी कयामत तक जो लब्बैक कहने वाले हैं ये वही होंगे कि जिन्होंने उस मौके पर लब्बैक कही थी। अब आप और फरमाइए बरादरान अजीज, अच्छा जिसने उस मौके पर नहीं कही उसको ये सआदत नहीं मिलेगी? दूसरे लफ्जों में यही मतलब हुआ ना, और क्या हुआ? मैं दूसरे अल्फाज से कहता हूं कि इल्मे परवरदिगार में था कि कयामत तक अपने इख्तियार से कौन लब्बैक कहने वाला है, उसको यह सआदत मिली कि वो उस मौके पर उस आलम में लब्बैक कहे। अब मैं आपसे पूछता हूं बरादर अजीज, अल्लामा रिशान अदर जवादी अल्लाह मकामों का बड़ा हसीन खूबसूरत लतीफ नुक्ता है, वो बहुत प्यारी बात कहते हैं और आपके जौक से बहुत करीब होकर मैं अर्ज कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि भाई सुनने वाले अगर हो ना तो माओ के शिकम में भी नबी की सदा को सुन ले, असलाबे पिदर में भी जो सुनने वाले होते हैं वो नबी अगर सदा लगाए तो असलाबे पिदर में भी सुन लेते हैं, शिकम मादर में भी सुन लेते हैं, और जो ना सुनने वाले हों वो ओहद का मैदान होता है, नबी सदा लगाता है, लोग सुनने के बजाय भागने को तरजीह देते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जरा सा इसको मुकम्मल किए और देखिए गौर फरमाइए कि वो जितने भी अफराद कि जिन्होंने सदा का जवाब दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब दिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? लब्बैक कैसे कही जाती है जरा गौर कीजिएगा। लब्बैक बेशक कहिए लब्बैक, तो उसके बाद क्या कहा जाएगा? अगला लफ्ज क्या है? लब्बैक या इब्राहिम लब्बैक, ये जुमला तो नहीं कहा जाता। आप सुनते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यही कहा जाता है, हाजिर हूं अल्लाह में हाजिर हूं, यही जुमला कहा जाता है। कोई ये कहता है लब्बैक या इब्राहिम लब्बैक, कोई एक भी नहीं कहता। सदा किसने लगाई? सदा तो इब्राहिम ने लगाई थी, तो सारे हाजियों को कहना चाहिए लब्बैक या इब्राहिम लब्बैक। मगर ये सब के सब सदा का जवाब क्या देते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई सदा इब्राहिम ने लगाई है तो क्या इब्राहिम को खुदा मान लिया? अगला ही जुमला यह है लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूं तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाजिर हूं, तो क्या ये इब्राहिम से कहा जा रहा है कि मैं हाजिर हूं तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाजिर हूं? आप जरा गौर फरमाइए कि ये जुमला कहा जा रहा है परवरदिगार आलम से, जवाब में कहा जा रहा है। जब किसी ने सदा लगाई है तो जवाब दिया जा रहा है कि मैं हाजिर हूं, मगर सदा लगाने वाला खुदा तो नहीं, सदा लगाने वाले इब्राहिम है। तो जितने हाजिर हैं वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि बिल्कुल सही कि सदा इब्राहिम ने लगाई थी, मगर जाती हैसियत नहीं लगाई, खुदा ने उनको वसीला और नुमाइंदा बनाया था और उन्होंने सदा लगाई थी, तो इब्राहिम का सदा लगाना गोया खुदा का सदा लगाना है। जो बात इब्राहिम की सदा में समझ में आती है वो अली की मदद में क्यों समझ में नहीं आती? वो सदा खुदा के हुक्म से लगाई गई। अज़िल बिन नास, ये खुद बहुत अलग कह परवरदिगार, अगर तुझे सदा लगवानी है और पहुंचाना है तो बिलाखिर जब तुझे पहुंचानी है आवाज तो तू ही सदा लगा। मगर परवरदिगार आलम का निजाम ही वसीलों के साथ, परवरदिगार आलम का जो निजाम है वो वसीलों के साथ। परवरदिगार आलम भूख देता है, गिज़ा से मिटाता है, रिज़्क़ देने वाला वो है, मगर आप और फरमाइए कि उसने रिजा को वसीला बनाया, ऐतराज की क्या गुंजाइश है? उसने प्यास रखी मगर प्यास बुझाता है पानी के जरिए से। अगर कोई पानी को नजरअंदाज करे तो परवरदिगार अलग प्यास नहीं बुझाएगा, अगर कोई रिजा को नजरअंदाज करे तो खुदा भूख नहीं मिटाएगा। उसी तरीके से अगर कोई अली को नजरअंदाज करे तो फिर भूल जाए, सब कुछ मिल सकती है, मदद परवरदिगार नहीं मिल सकती। तो वहां पर क्या करा थे, पहले हुक्म दिया जा रहा है अज़ल फिर नास, लोगों में ऐलान कर दीजिए, सदा लगाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, सबने जो जवाब दिया लब्बैक या इब्राहिम नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा, माना कि सदा इब्राहिम की है, मगर इब्राहिम की सदा हुक्म परवरदिगार से, जाती हैसियत में नहीं है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम नुमाइंदा परवरदिगार बनकर मशीयत परवरदिगार के मुताबिक सदा। इसी तरीके से अली हो या कोई और मासूम हो, वो परवरदिगार आलम की मशीयत से हुक्म परवरदिगार के मुताबिक मदद करना है। यही वो चीज है कि जिसको कुरान मजीद में सूरह दहर के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम वही चाहते हो कि जो खुदा चाहता है। उनकी मशीयत, उनका चाहना खुदा के चाहने से अलग होता ही नहीं है। दुरूद पे ये मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अपने और फरमाए ब्रदर अजीज कि ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बुलंद कर चुके, खाना काबा को बुलंद करने के बाद सदाए आम हो चुकी कि हज के लिए आओ, हज के लिए आओ, हज के लिए आओ, और अब लोग कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब इस पत्थर की क्या अहमियत है, यानी सारी बातें कन्वर्ट होकर तो यहाँ पर आ गए कि इस पत्थर का आज क्या मकाम, आज भी क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके ऊपर खड़े हुए? जवाब जी, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र इस पत्थर के नीचे है? जवाब जी, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहाँ पर नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी खड़े हुए नजर नहीं आते। लेकिन कुरान मजीद आप उठाकर देखिए, दो मकाम पर परवरदिगार आलम ने मकाम इब्राहिम का तज़किरा किया, और एक मकाम पर तो सराहत के साथ कि इत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना, अपना मुसल्ला बना। नमाज किसकी पढ़नी है? खुदा की। मगर मकाम इब्राहिम के पास क्या करते हैं? आप में से वो अहबाब के जिन्होंने हज या उम्रे की शहादत हासिल की, वो जानते हैं कि जब खाने काबा का वाजिब तवाफ किया जाता है तो उसके बाद दो रकअत तवाफ की नमाज पढ़ी जाती है, और उसके लिए जरूरी है कि इंसान मकाम इब्राहिम के पीछे आए। अब सवाल ये है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, मगर क्या वजह है कि परवरदिगार आलम को इसरार है कि उस जगह को मुसल्ले के तौर पर इख्तियार किया जाए? ये कुरान है, इत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास जाओ, वहां पर नमाज का अहतमाम करो, वो दो रकअत नमाज वहीं पर पढ़ी जाएगी। मगर वजह क्या है, कब वो मकाम इब्राहिम है? मैं फिर सवाल कर रहा हूँ कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद है? आखिर नहीं, इब्राहिम नहीं है। क्या इब्राहिम की कब्र मौजूद है? वो जो वहां पर बार बार शिर्क की आवाज लगाते हैं वो तो कब्रों के किसी एहतराम के कायल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं सवाल करूं कि क्या वहां कब्र, कब्र भी नहीं है, तो अब वहां पर क्या है? अब तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। तो जवाब ये मिलेगा कि जनाब सिर्फ पत्थर नहीं है, उस पत्थर के ऊपर इब्राहिम के कदमों के निशान और हैं, उसी को प्रिजर्व करने के लिए शोकेस बना दिया गया है, उसको महफूज कर दिया गया है उस शोकेस के अंदर। जाहिर है आप में से बहुत से अफराद जाकर देख चुके होंगे, और अगर इंटरनेट पर देखना चाहें तो हर कोई देख सकता है कि वो एक शोकेस सा बना हुआ है, उसके अंदर पत्थर है, पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वो काम किया तब किया, मगर अब तो नहीं कर रहे हैं, अब इस पत्थर की अहमियत क्या है? तो मानना पड़ेगा कि निजामे परवरदिगार ये है कि जिन्होंने दीन की खिदमत की है, खुदा उनकी याद को जहनों से महव होते हुए नहीं देखना चाहते। ये फलसफा है, ये इसकी फिलॉसफी। परवरदिगार आलम ने इसीलिए इस पत्थर को आज तक महफूज भी रखा, और फिर हुक्म ये दे दिया कि यहां पर आओ, यहां पर आकर नमाज पढ़ो, इस पत्थर के पास आकर नमाज पढ़ो, ताकि तुम्हें मेहमान काबा की याद भी तुम्हारे दिल में रहे, वो तारीख भी तुम्हारे दिल में रहे, वो हिस्ट्री तुम्हारे जहनों से महव ना होने पाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ ब्रदर अजीज कि जब इंसान परवरदिगार आलम की इस मसलहत, इस फलसफे, इस हिकमत को समझ लेता है तो और बहुत सारी चीजें उसके लिए हल हो जाती हैं। कैसे हल हो जाती हैं? समझ में आ जाता है कि अगर एक पत्थर पर हुज्जत खुदा के कदमों के निशान हो तो वो आम पत्थर नहीं रहता। बहुत तवज्जो कीजिए कि जब हुज्जत खुदा उसके कदमों के निशान एक पत्थर पर आ जाए तो अब ये आम पत्थर नहीं रहता, ये पत्थर मकाम इब्राहिम बन जाता है। जब ये समझ में आ गया, मैं तकरार के साथ कह रहा हूं, जब यह समझ में आ गया कि पत्थर पर हुज्जत खुदा के कदमों के निशान आ जाए तो फिर वो आम पत्थर नहीं रहता, वो पत्थर मकाम इब्राहिम बन जाता है। तो फिर समझ में आ जाता है कि अगर मट्टी पर हुज्जत खुदा के खून के निशान आ जाए तो वो आम मट्टी नहीं रहती, वो खाके शिफा बन जाता। अब उसके खाके शिफा होने में प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, जहमत क्या है, तकल्लुफ क्या है? अगर इंसान परवरदिगार आलम की सुन्नत को समझे, फिर उस आयत को ध्यान में रखे कि लन तजिद लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला, कि तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओ, तहवील नहीं पाओ। कि परवरदिगार का निज़ाम, परवरदिगार आलम का मिजाज, परवरदिगार आलम का डिजाइन, परवरदिगार आलम का हाउ एक्सपोडली के तरीकेकार क्या, खुदावंद ने मुताल्लिक़ क्या है, जब ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर किसी के समझ को जहमत नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। कि परवरदिगार का अंदाज ही वो याद मिटते हुए नहीं देखना चाहिए, उसने ऐलान किया है बस कुरूनी अस्कुरकुम, कि अगर तुम मुझे याद रखोगे तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। तो खुदा के हाफजे से कोई चीज़ नहीं हो सकती, उस पहली तो जाती अली मुमजा के सदूर दिलों के अंदर ख्याल भी आता है तो उसके इल्म में मौजूद है। तो फिर परवरदिगार की याद करने का मतलब क्या है? मतलब ही ये कि खुदावंद मुताल की याद का जो जितना एहतमाम करेगा फिर परवरदिगार उसकी याद को लोगों के दरमियान आम कर देगा। आप जरा और फरमाइए ब्रदर ने अजीज, वो हुसैन इब्ने अली में मंजिल मसाए जरूर कि जिसने नोके नेजा पर परवरदिगार आलम की याद को बरकरार की। अगर परवरदिगार आलम के एहतमाम करते कि इस पूरी कायनात के अंदर हर जगह हुसैन हुसैन हो तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं, ये परवरदिगार आलम का निज़ाम। उसके बाद अगर वो ख्वाब के जहां पर सैयद शहदा का खून जज्ब हुआ है, दीगर शहदा करबला का खून जज्ब हुआ है, अगर वो जगह ख्वाब के शिफा बन जाए तो इसमें हैरत की क्या बात है। अगर आप और फरमाइए ज़ियारत वारसा के अंदर जो शहदा करबला की ज़ियारत है वहां पर हम ये जुमला आम शहदा करबला की नस्बत से कहते हैं, सैयद शहदा का तो मरतबा क्या होगा? आप जरा अंदाजा कीजिए वहां पर ये लफ्ज है जो मासूम ने सिखाए, ते तुम बताबतल अर्द लतीफी हा दुफन तुम, ऐ शहदा करबला तुम खुद भी पाक हो। ये मुस्लिम बिन औसजा का जिक्र, ये हुर बिन यज़ीद रिहाई का जिक्र, ये मुस्लिम बिन औसजा का, आबिद इब्न शदीद शाकिरी का, हबीब इब्न मजाहिर का जिक्र हो रहा है कि तुम खुद भी पाक हुए। बताबतल अर्द लतीफी हा दुफन तुम, और वो जमीन भी कि जिसमें तुम दफन किए गए तुम्हारी बरकत से पाको पाकीजा कर। फिर परवरदिगार आलम की तरफ से जो एहतमाम है वो अजीब अंदाज का है। आप और कीजिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब उस पत्थर को आम पत्थर नहीं है मकाम इब्राहिम के, इस पर खड़े होकर खलील खुदा ने खाने काबा को तामीर किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी पर बुलंद होकर लोगों को हज की दावत दी है। आज वो महफूज है सिर्फ पत्थरों के निशान पर, मगर ये पत्थर अब आम पत्थर नहीं रहा। आगे बढ़ जाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुरियत को छोड़कर गए थे, जरा गौर फरमाइए परवरदिगार आलम ने क्या कहा उसके बाद। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये तो बात की बात है, मगर जरा पहले चले जाइए, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से भूख से बिलख रहे उस मौके पर क्या कैफियत थी जनाब हाजरा की, उसको परवरदिगार आलम ने किस तरीके से महफूज रखा, उस याद को जनाब हाजरा ने क्या किया। सफा और मरवा के दरमियान सही दौड़े किसके लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे भी हैं उनको बचाने, मगर नबी खुदा की हिफाजत के लिए, उनके तहफ्फुज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए माँ के पास वो फितरी ज़खीरा ग़िज़ा परवरदिगार आलम की तरफ से वदीयत शुदा होता है, माँ ने उसका इस्तेमाल किया, मगर एक वक्त आया कि वो पानी खत्म हो गया, वो ग़िज़ा खत्म हो गई, और अब जनाब हाजरा परेशान कि मेरा बच्चा बिलख रहा, वो बिलख रहा, वो पानी के लिए तड़प रहा, और जनाब हाजरा सफा और मरवा के दरमियान सही कर रही, क्या कर रही, सफा से मरवा जाती है क्यों, इसलिए लगता है कि शायद पानी वहां पर है, अगर करीब जाती है तो पता चलता है सरा चमकती हुई रेत थी मिराज, पानी नहीं था। फिर वापस सफा की तरफ देखती तो लगता है कि शायद वहां पर पानी, वहां पर 7 मरतबा ये दौड़ लगाई, ये चक्कर लगा है। अब आप गौर फरमाइए, परवरदिगार आलम ने क्या किया? खुदा वाला मुताल फरमाता है, इतना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। याद रखो, यकीनन सफा और मरवा ये दोनों अल्लाह के शायर में से, मिन एलएल जानते हैं जो अरबी से वाकियत रखते हैं कि मिन का तर्जुमा यहां पर यही होगा कि शायर अल्लाह में से है। अगर सिर्फ इतना होता है इतना सफा वल मरवता शाइरुल्लाह तो तर्जुमा ये होता कि सफा और मरवा अल्लाह के शायर हैं। अगर इन नमा के साथ होता तो फिर तर्जुमा ये होता कि बस और बस सफा और मरवा ये अल्लाह के शायर हैं। अगर इन नमा नहीं कि बस और बस ये, जी नहीं, सिर्फ इतना इन्ना सफा वल मरवा शायर अल्लाह ये भी नहीं, मिन शायर अल्लाह। मिन का मतलब ये कि शायर अल्लाह की फहरिस्त तो बहुत तूलानी है मगर उनमें से दो ये हैं, उनमें से दो ये, एक सफा की पहाड़ी और एक मरवा की पहाड़ी, ये दो पहाड़ी, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये अल्लाह के शायर में से। आप और फरमाइए, अच्छा अल्लाह के शायर में से क्या इन्होंने सही की थी? क्या सफा की पहाड़ी ने सही की? क्या मरवा की पहाड़ी ने सही की थी? ठीक, सफा और मरवा के दरमियान जिसने सही की थी वो जनाबे हाजिर आए। अगर उस सही की बरकत से ये दोनों पहाड़ियां भी परवरदिगार आलम के शायर में शामिल हो गई, एक तो वही पैगाम मिला कि परवरदिगार आलम यादों को महव होते हुए नहीं देखना चाहता, एक तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या है कि जनाब हाजरा ने सही की सफा और मरवा के दरमियान, आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि जनाब इस्माइल यहां पर एड़ियां रगड़ रहे थे, वहीं से चश्मा जमजम, सैले जमजम, आबे जमजम वो जारी हो गया। जमजम तो उसको बाद में कहा गया, तो जनाब हाजरा ने कहा जमजम रुक जा ठहर जा, नाम पड़ गया उसका। फिर एहतमाम किया जनाब हाजरा ने कि वो पानी जो है उसके लिए एक मंडेर सी बना दी जाए ताकि वो चश्मा स्टैब्लिश हो जाए, वो कुआं स्टैब्लिश हो जाए, वो आज तक लोग उससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन आप गौर फरमाइए बरादरान अजीज, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में और अपने नौजवान दोस्तों को खास तौर पर मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, उलमाए कराम ने ये नुक्ता लिखा कि ये बताइए सही का मतलब क्या है? कोशिश, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, एफर्ट्स करना, कोशिश करना, ये है इसका मतलब। जनाब हाजरा कोशिश कर रहे हैं, आखिर में क्या हुआ? पानी बरामद हो गया, 7 मरतबा दौड़ाया और फिर उसके बाद पानी बरामद हो गया। अल्लाह की दो सिफतें हैं, एक है कि खुदा अलीम है और दूसरी सिफत है कि अल्लाह कदीर है। ये दोनों सिफतें सिफात सुबूतिया की ये दो मरकजी सिफात है, मरकजी सेंट्रल। अगर आप औसाफ या एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो ये दो हैं, अलीम और कदीर, बाकी सब इसके ऑफशूट्स हैं। खुदा का बसीर होना, खुदा का समी होना, खुदा का मुद्रिक होना, ये सब उसके ऑफशूट्स हैं। लेकिन जो मेन दो सिफात है वो ये, वो अलीम है, वो कदीर है। ये इल्म कलाम की तुलानी कैसे है, मगर आइए वापस इसके ऊपर फोकस करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, क्या खुदा को इल्म है? जवाब जी है, इल्म परवरदिगार में है। क्या परवरदिगार आलम चश्मे जमजम जारी करने पर कुदरत रखता है? जवाब जी हां बिल्कुल। तो खुदा के इल्म में भी है वो अलीम है, खुदा की कुदरत भी है वो कदीर है, अलीम भी वो है कदीर भी वो है, दुरुस्त है, कोई शक शुबा तो नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब उसको इल्म भी है कि इस्माइल प्यासे है, जब उसके पास कुदरत भी है कि वो चश्मा जमजम को जारी कर सकता है, तो ये 7 मरतबा दौड़ाने की क्या जरूरत है? ये 7 मरतबा दौड़ाने की क्या जरूरत है? आप गौर फरमाइए, खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्त इस बात पर तवज्जो करें कि परवरदिगार आलम ने इस याद को महफूज करके वो पैगाम भी तो महफूज करवा दिया। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये कि तुम्हारी कोशिशों का नतीजा निकलेगा मगर कोशिश के बाद। खुदा तुम्हारे लिए जमजम का चश्मा जारी करेगा मगर तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास परवरदिगार आलम ने कोई ताकत नहीं रखी, खुदा ने तुम्हें जीरो पर नहीं रखा, परवरदिगार आलम ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए। अब कोई ना खुदा राजे रहे तो मिलता नहीं, कोशिश के तुम जिम्मेदार हो, तुम कोशिश के जिम्मेदार हो, फिर नतीजे की तवक्को करो। अगर कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो तो आयत सुन लो, قرآن کیا ہے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بالکل وہی لفظ صح صحیح وہ استعمال کیا پروردگار نے. اجتماعی معاملات میں بھی ارشاد ہوتا ہے ان اللہ، بہت مشہور آیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے. یہ کیا اعتراض ہے؟ کیا انسان دعا نہ کرے؟ کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، مگر وہ دعا کرنے کے بعد نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کا ذمہ دار ہے. وہی جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، اے ابراہیم سزا لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا، پھر اس کے بعد نتیجے کو ہم پر چھوڑ. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اے حاجرہ تم کوشش کرو، اے پروردگار پانی نہیں مل رہا پھر بھی تم کوشش کرو، ڈھونڈو. اس کے بعد جہاں پروردگار عالم کی مصلحت ہوگی وہ پانی کا چشمہ وہاں پر جاری کر دے گا، وہ کوشش نتیجہ خیز ہو جائے گی. بس اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ صفا اور مروہ ان کو پروردگار عالم نے کیا قرار دیا؟ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ کہ نشانی، یہ اللہ نہیں ہے. ان صفا والمروہ اللہ نہیں ہے، یہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے. یعنی جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں حاجرہ یاد آئے گی، حاجرہ یاد آئے گی تو وہ کوشش یاد آئے گی، وہ کوشش یاد آئے گی تو یہ یاد آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسماعیل کو بچانے کے لیے کوشش کی تھی، اس کوشش کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا تو علم خدا بھی سمجھ میں آئے گا، قدرت خدا بھی سمجھ میں آئے گی. اب آپ نے غور فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا سمجھ میں آنے لگتا ہے، جو ایسے ہوتے ہیں پھر انہی میں سے کسی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. وہ چہرہ پھر عام چہرہ نہیں رہے، وہ پتھر جب عام پتھر نہیں رہا تو وہ پتھر پھر کہلایا مقام ابراہیم، جب وہ پہاڑیاں عام پہاڑیاں نہیں رہی تو کہلائیں شاعر اللہ کا مزاج. اور اسی طریقے سے جب وہ چہرہ عام چہرہ نہیں رہا تو پھر وہ فقط چہرہ نہیں ہوگا، وہ بچ اللہ کہلائے گا کہ اس کو دیکھو تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے کہ مظہر العجائب یہ ہے کہ خود خدا عجائب کیا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شاعر اللہ کا ایک اور مثال جو قرآن مجید نے سورہ حج کے اندر بیان کیا اس پر بھی غور کریں تاکہ ہمیں کربلا اور بہتر انداز میں سمجھ میں آئے. جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا تھا میں نہیں لے جانا ہے، ہمیں تو بغداد اور سامرہ تک جانا تھا، مگر انشاءاللہ یہ بحث کل آگے بڑھے. مگر غور کرنا یہ بڑا زیادہ سی کہ یہ سورہ مبارکہ حج پروردگار عالم فرماتا ہے البدنا جعلنا لکم من شاعر اللہ. بدھ بدھ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. اب اس کے ماتحت جو زیاد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سارے قربانی کے جانور اس کے ماتحت آ جاتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے والبدنا جعلنا لکم من شاعر اللہ، یہاں پر بھی ہے من، یعنی یہاں پر بھی فہرست مکمل نہیں ہو رہی، فہرست بلانی ہے. والبدنا یہ قربانی کا جانور، جعلنا اس کو ہم نے قرار دیا پروردگار کے، کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. کیا قرار دیا؟ من شاعر اللہ، ہم نے اللہ کے شاعر میں سے اس کو بھی قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قربان کیا جا رہا ہے، کس کی راہ میں؟ خدا کی راہ، خدا کی راہ. اب برادران عزیز، بہرحال میں دنیا داری کے مزاج پر کیا تبصرہ کروں کہ جہاں اس بات پر مقابلہ ہوتا ہوں کہ کس کا جانور کتنا موٹا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کی شہرت زیادہ ہوگی، لیکن جو للہیت کا جذبہ ہے صحیح معنوں میں تو اس کی امپورٹنس ہے. اگر آپ غور، یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے پاس اس قربانی کے گوشت کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، خون بہ جاتا ہے، گوشت لوگوں کے کھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کتنی پاکیزگی کے ساتھ، نیت کے کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اس کام کو انجام دیا. یہ خود قرآن مجید نے واضح کر دیا اس بات کو लेकिन परवरदिगार क्या कह रहा है, अभी तो उसको काटा नहीं गया। परवरदिगार फरमाता है, बुझना इस जानवर को जानना, इसको हमने करार दिया लकुम तुम्हारे लिए, मैं चायर लेना अल्लाह की चायर में से पहले सुना नहीं है, उसमें ये भी शामिल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा गौर कीजिएगा और इस रुख से गौर जरूर कीजिएगा, खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो करिए, मुझे एक बात बताइए, ये जो कुर्बानी का जानवर है ये अपनी मर्जी से कुर्बान हो रहा है, ये अपनी मर्जी से कुर्बान हो रहा है, अपने फ्री विल के साथ सेक्रीफाइस हो रहा है? अगर ये अपनी मर्जी से कुर्बान हो रहा होता तो बिरादरान अजीज इसको बांध कर आप क्यों रखते? वो जितने अपराध कुर्बानी कर रहे होते हैं वो ख्याल करते हैं कि ऐसा ना हो कि जब छुरी चल रही हो तो ये भाग ना जाए, और फरमाइएगा तो क्या ये अपनी मर्जी से कुर्बान होना चाहिए? नहीं, ये जो साहिबुल्लाह बना है तो किसकी वजह से बना? उसकी नीयत की वजह से कि जिसकी तरफ से इसको कुर्बान किया जा रहा है, ये अपनी मर्जी से कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। वो गाय हो, वो बैल हो, वो बकरा हो, वो भैंस हो, जानवर हो, मवेशी हो, कोई भी हो, वो अपनी मर्जी से कुर्बान नहीं होना चाहता, वो विलफुली सेक्रीफाइस नहीं होना चाहता, उसकी अपनी कोई तमन्ना नहीं है कि उसको जबा कर दिया जाए, और फरमाइएगा मगर जो उसका मालिक है, क्योंकि वो इसको कुर्बान करना चाहता है और खुदा की राह में कुर्बान करना चाहता है, उसकी नीयत की वजह से परवरदिगार आलम कह रहे हैं वलबुदना जअलना लकुम शायर अल्लाह, हमने इसको अपने शायर में से, अल्लाह के शायर में से हमने करार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर तो करें कि वो जानवर जो अपनी मर्जी से कुर्बान नहीं हो रहा मगर अपने मालिक की नीयत की वजह से, वो अल्लाह के शायर का मिजाज बन जाएगा, और जिसने करबला में अपने पूरे घराने को अपनी मर्जी से कुर्बान कर दिया वो अल्लाह के शायर का मिजाज नहीं बन जाएगा? क्या ये बात काबिले तसव्वुर है, ये काबिले फहम है, ये क्या वाकई समझने आने वाली बात? जरा गौर कीजिए और फिर मजीद इस रुख से भी गौर कीजिएगा कि ये आज जितने भी जानवर जबा किए जा रहे हैं ये तो शबी है, ये असल वो जानवर तो नहीं, असल जो जानवर था वो कौन सा था? वो तो वही था कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जबा के वक्त आया, वो दुम्बा तो जबा हो गया, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो असल जानवर था? आज तक सब के सब उसकी शबी बनाकर उसको जिबा भी करते हैं और उसको शायदुल्लाह होना समझ में भी आता है, उन सब को वो चीजें वहां पर समझ में आ जाती है कि हाँ शबी भी हो सकती है, मगर वही शबी अगर हुसैन के रोजे की बनाए जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता। मामला तो सिर्फ अकीदत के इजहार का, वरना कौन इसको खुदा मानता? ना उस जानवर को अल्लाह माना गया, उसको भी शायदुल्लाह। और समझिएगा कि शायरुल्लाह के जो मफहूम के अंदर जो वसअत, वो इंसानी जहन जैसे जैसे तरक्की करेगा वैसे वैसे उसको समझ में आएगा। और कीजिए, यानी बहुत से अहबाब इस हवाले से परेशान होते हैं, मैं कहता हूँ कि इतनी सी बात समझिए कि अगर मैं आपके घर में हूँ, ये बाकायदा हुआ था इत्तेफाक ऐसा है, बस इसी को बयान करके समझने मसाइल पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक मोमेंट कराची की बात है, नाम भी नहीं लूंगा और इंतकाल भी उनका हो चुका, अल्लाह उनके दरजात को बुला, उनको इश्तबा हो गया। देखिए मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ, कभी पैसा पैसी हो जाती है, तुंदी आ जाती है गुफ्तगू के अंदर, तो एक दूसरे को दायरा ईमान से खारिज करने में जल्दी ना करें, ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी बर्दाश्त, गलत फहमी हो सकती है। यही हुआ, वो साहब कहने लगे कि साहब ये आपको समझ में नहीं आता, कराची की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपको समझ में नहीं आता, ये क्या तरीकेकार है, ये शबी और ये सारी चीजें मोमिन है, नहीं समझ पाए। अच्छा उन्होंने पूछ लिया, तो कहा है ना कि वो पूछे, उन्होंने पूछ लिया। मैंने उनसे एक बात कही, बाज़ोकात मैंने बाद जगहों पर ही बयान भी किया था, यहाँ नहीं बयान किया, मैंने उनसे सवाल किया कि एक बात बताइए मुझे, मैं अगर आपके घर पर आऊँ तो आप क्या करेंगे? कहा आप मेरे मोहतरम है, तशरीफ लाइए, मैं आपका एहतराम भी करूँगा, आपको बुलाऊंगा भी, आपके लिए इंतजाम भी करूँगा। मैंने कहा वहां पर जाहिर है कि आपके घर में आपके वालिदैन का इंतकाल हो चुका उनका, तो कहा उनकी कोई तस्वीर वगैरह होगी? अब कहाँ है, मैंने लगाई हुई है बड़े एहतराम के साथ। कहा अगर मैं आऊँ आपके घर में और उस तस्वीर को उठाऊँ, पटकूँ और उसको पैर से रोन डालूँ, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो अगर मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई विल किक यू आउट। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे आप मेरे लिए बड़े मोहतरम, मैं आपको बड़ा एहतराम करता हूँ। हाँ वो बात दोस्त है, मगर आपने मेरी वालदा के साथ, मेरे वाले, मैंने कहा आपकी वालदा के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उनका तो इंतकाल हो चुका, मैंने तो उनकी कोई तौहीन नहीं की, उनका जो इंतकाल हो चुका है, खुद बता रहे हैं कि आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालिदा का, मैं उनके साथ तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तस्वीर तो उन्हीं की है। मतलब तस्वीर है ना, वो खुद तो नहीं है, तस्वीर ही तो है, लेकिन तस्वीर है तो उन्हीं की। तो जिस तरीके से तस्वीर शबी बनकर मोहतरम हो जाती है, उसी तरह काजिया भी बनकर मोहतरम हो जाता है। वो साहिब मजार से नस्बत की वजह से सारे मामला की कि इंसान अगर इन नस्बतों को समझ ले तो मामला बहुत आसान हो जाते हैं। आप अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर, अपनी जेब में सफर पड़ जाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मुकद्दसात, उनकी तस्वीर लेकर चले जाते हैं। क्यों? उसी याद को बेदा रहते हैं। कभी वो रिश्ते की वजह से होती, कभी ताल्लुक की वजह से, मगर ये तमाम चीजें क्या हैं? उस मोहब्बत के इजहार के लिए, उस इज्जत एहतराम को एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई समझे या ना समझे, मगर यहां पर यह समझ में आ जाए कि दिल इससे मुतमईन भी होता है, इंसान उस याद को ताजा भी कर लेता है। किसी जमाने के अंदर एजाज से कितना शोर उठता था शबी के खिलाफ, कितना, लेकिन आज अगर आप गौर कीजिए तो वहां पर जो रॉयल फेस्टिवल होता है, बाकायदा जो दावत दी जाती है, हाजी जो वी आई पी होते हैं उन सबको खाने काबा का मॉडल दिया जाता है। आप तो इस्लामाबाद में तो ऐसे बहुत सारे अफराद से आप वाकिफ होंगे जो कि वहां भी वी आई पी बनकर गए, हज किया उन्होंने और जब वापस आए तो इस तरह के मॉडल लेकर आए। वहां पर बिकते नहीं है, वहां पर बिकते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सब क्या है ये खाने का बार? ये खाने का बार नहीं। किसी बदतरीन वहाबी के सामने बहुत माजरत के साथ अगर खाने काबा का मॉडल आप लेकर जमीन पर फेंक दें वो चढ़ जाएगा। अगर आप उससे सामने यही सवाल करें कि ये खाने काबा का मॉडल है, ये खाने काबा है, वो कहेगा खाने काबा का मॉडल है। जब खाने काबा का मॉडल है तो खाने काबा को तो कुछ नहीं किया है, ये तो मॉडल ही फेंका है। तब उसको समझ में आएगा कि शबी क्या होती है, शबी का एहतराम है। ये बिल्कुल फितरी। अब जाहिर है कि हम तो खाने काबा के वारिस तो खाने काबा का भी एहतराम करेंगे, खाने काबा के मॉडल का भी एहतराम करेंगे, हुसैन के रोजे का भी एहतराम करेंगे, रोजे की शबी का भी एहतराम करेंगे। जो अब्बास का आलम है वो भी हमारे लिए मोहतरम था, और आज जो अब्बास के अलम की शबी बनाई जाती है वो भी हमारे लिए मोहतरम है। तो बुनियादी तौर पर उसूल ये सफा मरवा को देखो ताकि तुम्हें हाजरा याद आए, हाजरा की सही याद आए, इस्माइल याद आए, मकाम इब्राहिम को देखो ताकि इब्राहिम की कोशिश याद आए, काबे को देखो ताकि खाने काबा के साथ बैतुल्लाह के साथ अल्लाह याद आए। जबकि तमाम तर चीजें समझ में आएंगी तो फिर समझ में आएगा कि क्या वजह है कि 35 बरस तक सैयद सज्जाद के लिए आते हैं। क्या ये यादें हैं और फकत खानदानी नस्बतों की वजह से नहीं, शायद अल्लाह के मसादी की। जरा अंदाजा कीजिए बरातन अजीज, मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज करूं? कोई मुझे बताए कि सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजर रही थी कि जब वो तमाम उस वाकयात को अपनी आंखों से मुशायदा कर रहा, 35 बरस तक दिया कुछ बता रहा है सैयद सज्जाद मदीने मुनव्वरा के अंदर। अल्लामा रशीद तुरानी के हवाले से मैं अक्सर इस रिवायत को पढ़ा करता हूं। सैयद सज्जाद मदीने मुनव्वरा में कूफा के अंदर जनाब मुख्तार का खुरूज हो चुका है, वो कातिलान इमाम हुसैन को गिरफ्तार करते हैं, उनसे एतराब जुर्म करवाते हैं और फिर उनको तहदीक करते हैं, ये उनका तरीके कार करते हैं। यह आप सबके जहन में होगा कि जितने भी कातिलान इमाम हुसैन है वो सब के सब अपनी कार्रवाई जो भी उनके कारनामे थे उनकी दानिशमेंट उसको लिखकर उन्होंने अपने ज़ियाद के पास दफ्तर में जमा करवाया ताकि उन्हें इनाम मिल सके। ये तो बाद में उनको पता चला कि मामला सारे के खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन पहले तो इनाम हासिल किए लोग। अब आप गौर कीजिए कि ये होता था कि जनाब मुख्तार का फायदा वो फाइल मंगाते थे कि जिसमें उसने अपने सारे कारनामे लिखे होते, एतराब जुर्म करवाते, और वो कहते थे कि देख मैं इससे मैच करूंगा कि जो तूने यहां पर लिखकर जमा करवाया था तू वही कह रहा है या कुछ और कह रहा है। ये जनाब मुख्तार को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया था, जो मक्तल हम तक पहुंचे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स जनाब मुख्तार के ये वाकयात है। सैयद सज्जाद मदीना मुनव्वरा में शहर कूफा का एक शख्स जो रहने वाला था वो मदीना किसी काम से आया, सैयद सज्जाद से मुलाकात। मुलाकात के दौरान सैयद सज्जाद पूछते हैं कूफे का क्या हाल है? वो कहने लगा मौला मैं कूफे का क्या हाल बताऊं, मुख्तार कातिलान इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें तहकीक कर रहे हैं। सैयद सज्जाद ने अपना चेहरा झुकाया कुछ देर, फिर अपना चेहरा बुलंद किया और पूछा, हुरमला गिरफ्तार हुआ? हुरमला पकड़ा गया? ये शख्स कहता है कि मौला में है ना, आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में सवाल नहीं किया, हद ये है कि आपने अपने बाबा हुसैन के कातिल के बारे में भी नहीं पूछा, आपने पूछा तो उस नन्हे मुजाहिद के कातिल के बारे में सवाल किया। आपको मालूम है सैयद सज्जाद ने क्या जवाब दिया? सैयद सज्जाद कहते हैं वो तीर असगर को तो नहीं लगा था, वो तीर असगर को तो कहां लगा, वो तीर हम आले मोहम्मद के दिल के पार हो गए, हम उस मासूम के खून को फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, उसके कातिल को भी नहीं भूल सकते। इसने कहा कि मौला अब तक हुरमला को गिरफ्तार नहीं हुआ। सैयद सज्जाद बहुत कम है या आले मोहम्मद की तारीख में कि बदुआ ली जाए, मगर कुछ मौके हैं कि जहां पर बदुआएं दी हैं, उनमें से एक मौका यह है कि सैयद सज्जाद ने हुरमला को बदुआ दी और अब यह शख्स पलट कर वापस आया। जबकि कूफा में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अमीर मुख्तार का दरबार लगा हुआ है, सजा हुआ है और हुरमला को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। जैसे ही उसने हुरमला को गिरफ्तार देखा, फर्ते अकीदत जज्बात से उसने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। मुख्तार उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, अल्लाह की कबीराई में तो कोई शुबा नहीं है, मगर यह बता कि इस वक्त नारे तकबीर लगाने का कौन सा मौका था? उसने कहा, अमीर मैं क्या बताऊं, मैं तो अभी मदीने से सफर करके कूफा में दाखिल हुआ हूं। मदीने में सैयद सज्जाद ने वाहिद शख्स के जिसके बारे में सवाल किया था कि वो गिरफ्तार हुआ या नहीं, वो यही हुरमला था। अमीर जब मैं यहां पर आया, मैंने हुरमला को गिरफ्तार देखा, मैं काबू ना रख सका खुद पर और मैंने बे इख्तियार नारे तकबीर बुलंद कर दिया। अब जनाब मुख्तार की आंखों में आंसू आ गए और मुख्तार कहते हैं, हुरमला बता कि तूने कर्बला के अंदर क्या किया? हुरमला ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि अमीर जो सजा देनी है, मुझे कत्ल करना है कत्ल करना है, तहदेक करना है मेरी गर्दन उड़ा दे, मगर मुझसे ये मत पूछ के मैंने कर्बला के अंदर क्या किया। मुख्तार कहते हैं कि तुझे बताना पड़ेगा कि तूने कर्बला में क्या किया था। हुरमला कहता है, अमीर मेरे पास 7 तीर थे जिनमें से 4 निशाने पर नहीं लगे, 3 तीर थे जो निशाने पर लगे, क्या पता कि तूने पहला तीर किसको मारा। हुरमला कहता है कि अमीर ये वो मौका था कि जब अब्बास मशके सकीना को लेकर खेमों की तरफ जा रहे थे, मुझसे उमर साहब ने कहा, हुरमला कुछ ऐसा कर कि ये मश्क खेमों तक ना पहुंच सके। अमीर उस वक्त मैंने पहला तीर कमान में जोड़ा और जब मैंने उसको रिहा किया है, वो तीर जाकर लगा है मशके सकीना में, पानी बह गया और फिर अब्बास घोड़े पर संभल नहीं सके, कटे हुए बाजू थे, मुंह के बल जमीन कर्बला पर, क्या पता कि तूने दूसरा तीर किसको मारा। हुरमला ने दूसरा तीर छोड़ दिया, स्किप कर दिया, वो अगले तीर कहकर तीसरे तीर की तरफ चला गया। उसने कहा कि अगला तीर मैंने उस वक्त मारा कि जब हुसैन जख्मी हालत में खुश से जुलजना पर डगमगा रहे मगर गिर नहीं रहे। उस वक्त उमर साहब ने मुझसे कहा, ए हुरमला कुछ ऐसा करके हुसैन जुलजना से जमीन पर आए। उस वक्त मैंने एक तीर कमान में जोड़ा और जब रिहा किया है, वो तीर जाकर पेवस हुआ है हुसैन की पेशानी पर, पेशानी से खून का फव्वारा जारी हुआ और फिर उसके बाद हुसैन जुलजना के ऊपर ठहर नहीं सके, गिरे जमीन के ऊपर। अब मुख्तार कहते हैं कि बता के तूने तीसरा तीर किसको मारा। हुरमला कहते हैं, अमीर ये तीसरे तीर के बारे में मुझसे नहीं सवाल कर, इसके बारे में नहीं बताना चाहता, खाली बताना तो तुझे पड़ेगा। हुरमला कहते हैं, अमीर ये वो वक्त था कि जब बच्चा बाप के हाथ पर था और हुसैन फरियाद कर रहे थे, क्या फौजी अशिया तुम्हारी नजर में कोई कसूरवार है तो मैं हूं ना, इस बच्चे ने क्या कसूर किया है, इसकी माँ का दूध तक खुश हो चुका है, आओ और आगे बढ़कर इसको पानी पिलाओ, मगर किसी ने पानी नहीं पिलाया। उस वक्त हुसैन ने कहा, अगर तुम समझते हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो मैंने इस बच्चे को गर्म रेत पर लिटा दिया, असगर रेगजारे कर्बला पर उसकी गर्मी की वजह से मचलते रहे, तड़पते रहे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा और किसी ने पानी नहीं पिलाया। फिर उसके बाद हुसैन ने बच्चे को हाथ में लिया और कहने लगे तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो ना बेटा, तुम बताओ कि तुम कितने प्यासे हो। ए मादरे इस्माइल, आपका इम्तिहान खत्म हो गया, मगर ये नवाब का इम्तिहान है जो खत्म नहीं हुआ। इस्माइल के लिए उस मौके पर सहने जमदम जारी हो गया, मगर ये करबला का इस्माइल है कि जो तड़पता तड़पता इस दुनिया से चला गया, जैसा इम्तिहान उससे भी आगे चला गया। उस वक्त हुसैन मजनू ने जब ये कहा है तो असगर ने अपना रुख किया है फौजी अशिया की तरफ, सूखी जबान निकल, सूखे होठों पर फेरते जाते, इंकलाब के आसार लोग मुंह फेर फेर के रो रहे हैं। उस वक्त गुरबला कहता है कि मुझे उमर साहब ने कहा इकता कलामल हुसैन, कुछ ऐसा करके हुसैन की बात टूट जाए, कलाम कट जाए। उस वक्त मैंने तीन भाल का तीर जब कमान में छोड़ा है, वो तीन भाल का तीर जो घोड़े की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अजीजान आप अपने दिल से सवाल करें, कहां घोड़े की गर्दन, कहां असर का नर्म लगा। उसने कहा कि फिर मैंने कमान से तीर को रिहा किया। मुख्तार कहते बता फिर क्या हुआ। गुरबला कहते पता कर लो सभी वाला या नहीं लेना, वो बच्चा बाप के हाथ में मुंतकलिब हो गए। हुसैन ने असर के खून को अपने खिल्लू में जमा किया और अपने चेहरे पर मल कर कहा मैं इसी तरह अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुम अल्लाह अला बलाहतुल्लाहि लिल्कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन ख़लबिय्यन ख़लबू मा तनूसे।